Hare Krishna, it is our very great fortune to listen His Grace Rukmini Krishnaji on the auspicious occasion of Gaur Purnima on 28th of February 2010, Sunday. Hare Krishna.
Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jayo Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Nitai Gaurango, Nitai Gaurango 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 Nitai Gaurango, Gaura Hari Nitai Gaurango, Gaura Hari Nandana Jayo Satinandana Jayo Satinandana Gaura Hari Jayo Satinandana Jayo Satinandana Jayo Satinandana Jayo Satinandana Priya Pranandana Gaura Hari Nadiya Vihari Gaura Hari Nitai Gaurango Nitai Gaurango Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango,
परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्रीमदिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडराचार्य जगत गुरु श्री द होल वर्ल्ड श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्रीमदिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सदी गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की वैष्णव सारगुण श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भरदास रघुनाथ शट गोस्वामी वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की गौरांग महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की निताय गौर प्रेम आनंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Ajnanasti Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः चैतन्य महाप्रभु की गौरांग महाप्रभु की आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धैर्य से आप पिछले लगभग एक घंटे से कथा सुन रहे हैं। अभी कितना समय आगे चल सकते हैं हम, क्योंकि चैतन्य भाव की कथाएं अनंत हैं और आचार्यगण बताते हैं कि महाप्रभु उलान गीत है। उलान गीत का अर्थ है कि बिल्कुल समय परिस्थिति और काल से परे। इस संसार में हर चीज नापी जा सकती है लेकिन महाप्रभु को नापा नहीं जा सकता, बिल्कुल परे है। तो जैसा आप कहेंगे तब तक चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक घंटा हो गया है। कब तक हम कथा कर सकते हैं? दस सवा दस ओके 45 मिनट्स के आसपास करते हैं। तो मैं इस समय जो मन में बहुत कुछ चल रहा है कि क्या बोला जाए, फिलॉसफी भी है, लीला भी है, तत्व भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सी चीजें हैं। तो प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबके चरणों में और श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में कुछ महाप्रभु हम गुणगान कर सके और हम सब आज के इस महत्वपूर्ण दिन से हम सब लाभान्वित हो सके और हम सबके जीवन में कोई पॉजिटिव चेंज आए, परिवर्तन आए, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो महाप्रभु का जो अवतरण है बहुत ही विशेष है। वैसे तो भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्देहं नयति वामिति स अर्जुन, कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेगा उसका इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं होगा। तो आज हम कुछ प्रयास करते हैं चैतन्य महाप्रभु के जन्म की दिव्यता को समझने का। वैसे तो बोला गया है कि ये छन अवतार है, बहुत ढके हुए हैं, बहुत छिपे हुए हैं और इनके विषय में जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही गोहेदम अवतार है। और इनको बोला गया है प्रेमा अवतार, यानी कि कैसे हम श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या साधना करनी है, इसका ये खुलासा करने आए हैं। और उनको बोला गया है राधा भाव मूर्ति, जो राधा रानी का भाव है उसकी ये मूर्ति है, यानी कि जो राधा रानी की इच्छा है कि मैं कृष्ण प्रेम का वितरण प्रत्येक जीव को करूं, उस इच्छा का ये मूर्तिमान है। जो राधा रानी श्री कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं, उनकी इच्छा है कि जिस ढंग से मैं कृष्ण को प्रेम करती हूं, ये प्रेम प्रत्येक जीव में वितरित हो, उस इच्छा का मूर्तिमान रूप है चैतन्य महाप्रभु। तो रूप गोस्वामी जी ने बोला नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो हम भी जानते हैं पहले दिन से जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महारानी संघ में आता है वो बोलता है जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। लेकिन हमें कभी सोचा भी कृष्ण प्रेम होता क्या है, कैसे प्राप्त करना है, क्या होगा कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे, क्यों चाहिए, वास्तव में चाहिए भी नहीं चाहिए, चाहिए कृष्ण प्रेम, क्यों चाहिए, क्या होता है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा क्या हो जाएगा। ये तो हमें सिखा दिया गया जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, होता क्या कृष्ण प्रेम है, क्या कृष्ण प्रेम क्यों चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा और मिल जाएगा तो क्या होगा, वो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। नमो महावदन्याय, ये बहुत जो चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, क्यों कृपालु हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायक, कृष्ण प्रेम प्रदान करते। जब तक हम ये भी नहीं जानेंगे कि कृष्ण प्रेम क्या है, इसकी क्या महत्वता है, तो हम महाप्रभु की महत्वता को समझ नहीं पाएंगे, हमें लगेगा नहीं महाप्रभु बहुत महामदन्याय है। जब कोई हमें कोई उपहार दे रहा है उस उपहार के महत्व को हम समझेंगे नहीं तो देने वाले के महत्व को कैसे समझेंगे। तो कृष्ण प्रेम क्या है, किसी भी और धर्म में किसी भी शास्त्र में भगवान से प्रेम किया जाता है ये बात नहीं बताई गई। लव ऑफ गॉड माना जाता है, लेकिन लव ऑफ गॉड प्रेम है क्या किसी को नहीं मालूम। सभी धर्मों में भगवान की पूजा भय से या फिर कृतज्ञता से या फिर आदर से होती है, प्रेम करना ये अलग ही बात है। श्रील प्रभुपाद आत्म साक्षात के विज्ञान के ग्रंथ में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष योगदान रहा वो ये रहा कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है, उनके साथ एक सेक्स लाइफ है, भगवान के साथ एक मैथुन जीवन भी हो सकता है। यह अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक जीव के लिए कृष्ण के साथ भगवान के साथ मैथुन संबंध स्थापित किया जा सकता है, यह उनका विशेष योगदान है। अब किसी और जाओ, क्रिश्चियंस के पास जाओ, इस्लाम के पास जाओ, सोच भी नहीं पाएंगे ऐसा भी कोई है, ऐसा भी प्रेम होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने अनंत कोटि विष्णु वैकुंठ लोक है उसमें से सर्वोत्तम स्थिति किसकी है, गोलोक धाम की, और गोलोक धाम के गुह्यतम हिस्से से, गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द गोलोक वृंदावन, गुह्यतम हिस्से में क्या घटित हो रहा है वो हमारे सामने प्रदर्शित किया, यानी कि उसकी हमें झलक दिखाई और हमें ऐसा साधना बताई कि हम उस गुह्यतम क्षेत्र में प्रवेश कर सके। जाना चाहेंगे उस गुह्यतम प्रवेश में? अक्सर हम लोगों को कोई चीज जितनी ढक के रखी जाए उतनी हमारी उत्कंठा बढ़ती, क्या है दिखाओ और दिखाओ है ना, जितना उसको छुपा कर रखा जाए हमारी लालसा हमारी उत्कंठा बढ़ती है। तो ये उत्कंठा बढ़नी चाहिए, क्या है उसको एकम क्षेत्र में, हम कैसे वहां जाके सेवा कर सकते हैं। तो वो सेवा चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित की है। तो ये है कृष्ण प्रेम। होता क्या है प्रेम, हम इस भौतिक जगत में हैं, हम प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन इस भौतिक प्रकृति से परे आध्यात्मिक जगत है। जिस ढंग से भौतिक जगत में प्रत्येक जीव सत्वगुण रजगुण और तमोगुण से बंधा हुआ है, यह भगवान की बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति होती है इस भौतिक जगत से, लेकिन इसे आध्यात्मिक जगत है वो भगवान की कौन सी शक्ति की अभिव्यक्ति है, अंतरंगा शक्ति। जिस ढंग से बहिरंगा शक्ति के तीन मोड्स हैं सत्वगुण रजगुण तमोगुण, उसी ढंग से अंतरंगा शक्ति के भी तीन रूप हैं। कौन कौन से हैं, संधनी संवेद और हलादनी। जो संधनी शक्ति है उससे भगवान के परिकर भगवान का धाम भगवान का नाम आदि प्रकट होते हैं। जो संवेद शक्ति है वो भगवान की ज्ञान, जैसे भगवान और भगवान के भक्त उनके बारे में जान सकते हैं। और जो हलादनी शक्ति है वो भगवान को आनंद देती है, और अलादनी शक्ति ही जीवों का पोषण करती है। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि हलादनी शक्ति का जो सार है वो क्या है, प्रेम। अलादनी शक्ति का जो सार है वो है प्रेम, और जो प्रेम का सार है वो है भाव, और भाव की जो परिकाष्ठा है वो है महाभाव, और जो महाभाव के स्वरूपनी है वो है श्रीमती राधा रानी। और यही राधा रानी का महाभाव जब श्री कृष्ण स्वीकार करके आते हैं तो वो कहलाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और यही राधा रानी का महाभाव वो प्रत्येक जीव को वितरित कर रहे हैं। तो ये है कृष्ण प्रेम, समझे। जो कृष्ण प्रेम है वो क्या है, अलादनी शक्ति का सार है। थ्योरी समझ लें, हमें मालूम नहीं क्या है सर, लेकिन थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अलादनी शक्ति का सार है कृष्ण प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव की परिकाष्ठा है महाभाव, और महाभाव का जो पूरी स्वरूप है वो कौन है, राधा रानी। हम लोग जो बोलते हैं कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम अभी बिगनिंग है, शुरुआत है। कृष्ण प्रेम के बाद आता है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, यानी कि टॉप मोस्ट महाभाव वो हमें प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और इतना प्रेम की परिकाष्ठा किसको देने आए हैं भगवान, सबसे ज्यादा जो अयोग्य जीव हैं कलयुग उनको देने आए हैं। टॉप मोस्ट जो आध्यात्मिक जगत का सर्वोत्तम है और इस बौद्धिक जगत के निकृष्ट से निकृष्ट जीव को वो देने आए, इसलिए वो महावदन्य आए। कितने सौभाग्यशाली हैं। और ये जो ऑफर है टॉप मोस्ट सर्वोत्तम आध्यात्मिक जगत का और बौद्धिक जगत के निकृष्ट से निकृष्ट कलयुग के जीव को देने के लिए, ये जो ऑफर है केवल 10,000 वर्षों के लिए, उसमें से 500 वर्ष निकल जाए, उसके बाद जैसे बता रहे थे अक्रूर प्रभु कई कल्प निकल जाएंगे, कई ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं कितने वर्षों के, ब्रह्मा जी के सहस्त्र युग हजार चतुर्युग यानी कि 43,000,00,000 साल, 440 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे और 440 करोड़ साल की ब्रह्मा जी की रात, लगभग 900 करोड़ साल के बाद फिर से चैतन्य महाप्रभु आएंगे, फिर ये ऑफर हमें मिलेगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या देने आया है महाप्रभु। लेकिन समस्या क्या है, इतना कुछ सुनने के बाद भी हमारे अंदर ये उत्कंठा उत्पन्न नहीं होती कि हमने इसको प्राप्त करना है, हमने कृष्ण प्रेम हमें चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें संसार की अन्य वस्तुओं से संतुष्ट हो जाएंगे, इसलिए महाप्रभु ने बोला प्रेमो पुमार्थो महान। मनुष्य जीवन का लक्ष्य चार पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, पांचवा पुरुषार्थ क्या है, प्रेम, प्रेम प्राप्त करना। क्योंकि आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, वो तब होगी अहेतु की अप्रतिहता भक्ति से,
इसी प्रेम से हम संतुष्ट हो सकते हैं। इस प्रेम के अलावा किसी और वस्तु से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इस प्रेम से कम किसी और वस्तु से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें केवल ये प्रेम ही चाहिए। लेकिन जब तक हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न नहीं होगी हमें केवल प्रेम चाहिए, हम इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी हम जीव अपनी संतुष्टि इस सांसारिक वस्तुओं से करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में तो हम सोचते हैं। हमारा हर कार्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए है। हमारे समाज सेवा, परिवार की सेवा, तथा कथित भक्ति, धर्म का पालन करना, सहनशीलता वगैरह वगैरह जो कुछ भी है अपने मन और इंद्रियों की तृप्ति के लिए है। तो ये कहलाती है इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो आत्म इंद्रिय तृप्ति वांछा बोले काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों की इच्छा रखना ये कहलाता है काम, और कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करना ये कहलाता है प्रेम। तो प्रेम और काम में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? कृष्ण कृष्णा के विरज क्या बताते हैं, जैसे कि लोहे और सोने में, जैसे कि गहनतम अंधकार में और सूर्य में, इतना अंतर है। तो जब तक हमारा प्रत्येक कार्य पूर्ण रूप से इच्छा रहित नहीं होगा हम प्रेम के धरातल पर नहीं आएंगे। जब तक हमारा कार्य इस ढंग से हम करेंगे कि इस कार्य के फल को हमने भोगना है तो हम इस प्रेम से वंचित रहेंगे। तो हमारा प्रत्येक कार्य केवल कृष्ण की इंद्र की तृप्ति के लिए होना चाहिए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, तब हम इस प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, चैतन्य महाप्रभु ये उच्चतम प्रेम हमें देने आए हैं। इस प्रेम का आस्वादन जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए थे वो स्वयं भी नहीं कर पाए थे। श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, सत्य संकल्प हैं, स्वराट हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी वो इस प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाए। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के कुछ बहिरंगा कारण है, कुछ अंतरंग कारण है। बहिरंगा कारण क्या क्या है, बाहरी कारण क्यों है, महाप्रभु क्यों अवतरित हुए? हरि नाम का प्रचार करने के लिए, और अद्वैताचार्य जी की पुकार सुनकर, और युग धर्म की स्थापना करने के लिए। ये उनके बाहरी कारण है, लेकिन कुछ अंतरंग कारण भी हैं। अंतरंग कारण क्या है? राधा रानी का और है? तीन कारण है, उसको सीक्वेंस से समझना चाहिए। सबसे पहला कारण ये है कि राधा रानी की प्रेम की महिमा को जानना, कि राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है। भगवान कहते हैं कि मैं स्वराट हूं, परम नियंता हूं, लेकिन राधा रानी के प्रेम के आगे मैं एक कठपुतली के समान, पूर्ण रूप से मुझे वो वश में कर लेती हैं। तो क्या उनके प्रेम की महिमा है? दूसरा कि इस प्रेम के आधार पर मेरे इस माधुर्य का वो क्या आस्वादन करती हैं, मेरा माधुर्य क्या है। जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को दर्पण में देखा तो भगवान की क्या इच्छा उत्पन्न हुई, कि मैं इनका आलिंगन कर लूं। भगवान की इच्छा हुई मैं अपना ही आलिंगन कर लूं। भगवान की इच्छा हुई कि जो इनका मैं आस्वादन करूं। लेकिन भगवान के अंदर ही माधुर्य रस है, और भगवान अपने ही अंदर के माधुर्य रस का कैसे आस्वादन कर सकते हैं? भगवान अपने आप को इतना सुंदर लगे कि भगवान अपने ही सुंदरता का भोग करना चाहते हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं दर्पण में और देखते हैं कि हम सुंदर हैं, तो हमारे अंदर क्या इच्छा उत्पन्न होती है कि जो हमारे प्रेमी हैं वो इस सुंदरता का आस्वादन करें। किसी जीव के अंदर ये इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि मैं खुद अपने इस सुंदरता का आस्वादन करूं। तो भगवान की जो मधुरिमा है, माधुर्य है, वो इतना चमत्कारी है कि स्वयं कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करता है। इतने सुंदर हैं भगवान, अपने ही माधुर्य से वो आकर्षित हो गए।
तो इस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम किसके पास है? राधा रानी के पास। तो ये दूसरी इच्छा है कि अपने ही माधुर्य का आस्वादन करना। फिर इस माधुर्य का आस्वादन करके क्या आनंद मिलता है, उस आनंद को प्राप्त करना। तो ये तीन अंतरंग इच्छाएं हैं कि प्रेम की महिमा को जानना और अपने ही माधुर्य का आस्वादन करना इस प्रेम के बल पर। और जब माधुर्य का आस्वादन करते हैं तो किस तरह का आनंद मिलता है, उस आनंद का आस्वादन करना। तो ये तीन अंतरंग इच्छाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। कुछ आचार्यों का कहना है कि तीन की जगह उनकी चार इच्छाएं थी। चौथी इच्छा ये है कि ये जो महाभाव है ये प्रत्येक जीव को वितरित करना है। तो ये उनकी चौथी इच्छा है। तो महाप्रभु कितने कृपालु हैं कि ये टॉप मोस्ट, कोई महा श्री कृष्ण देखते हैं कि मुझे इतना आनंद नहीं मिल रहा जितना कि राधा रानी को आनंद मिल रहा है। और उन्होंने देखा कि राधा रानी का जो आनंद है वो मेरे आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा है। तो यानी कि चैतन्य महाप्रभु हमें वो आनंद देने आए हैं जो कि स्वयं कृष्ण भी प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण भी उसके लिए ललायित रहते हैं। और हमारी कोई योग्यता है? हम लोग इस संसार के आनंदों में फंसे रहते हैं। इस संसार में कोई आनंद नहीं है लेकिन हम इसी में फंसे रहते हैं। और जो हमें महाप्रभु देने आए हैं उससे हम वंचित रहते हैं। तो इस बात को हमने समझना है कि कितना दुर्लभ उपहार हमारे लिए महाप्रभु लेकर आए हैं। आज के दिन आज से 524 वर्ष पूर्व वो प्रकट हुए थे, तो हमने इस उपहार को प्राप्त करने के अंदर अपने अंदर योग्यता लानी है। तो ये महाप्रभु की विशेष कृपा है कि हमें आध्यात्मिक जगत का सर्वोत्तम आनंद देने आए हैं। और बिना किसी योग्यता के पापी से पापी व्यक्ति भी इसको प्राप्त कर सकता है। पापी से पापी व्यक्ति भी। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अगर महाप्रभु इतना सर्वोत्तम आनंद हमें देने आए हैं और हमको ये आनंद चाहिए, तो फिर अभी तक हमें कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिल रहा? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। वो कृष्ण प्रदान करने हमें आए हैं, भगवान की इच्छा है वो देने आए हैं, और हम लोग इसको क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्या हमारी समस्या कहाँ है? हमारी इच्छा नहीं है। और भाव नहीं। और थोड़ा से मनन करें आज कि जब महाप्रभु देने आए हैं तो मैं लेने को तैयार क्यों नहीं हूं अभी तक? क्या करना पड़ेगा मैं ले सकूं इसको? योग्य नहीं है। यस माता जी, प्रेम चाहते ही नहीं है। क्या समझ नहीं पा रहे? सही बात है। ये हिजोलिनस गोरगोन स्वामी महाराज ने बताया। देखो ठीक बात है, जो महाप्रभु हमें प्रेम बांट रहे हैं उस प्रेम को हम कहाँ करेंगे? हथेली में कहाँ रखेंगे उसको? उसके लिए एक पात्र की आवश्यकता है और वो पात्र होना चाहिए शुद्ध हृदय, है ना? अभी हमारे हृदय में छेद है। वो छेद क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे छेद हैं। तो हमें प्रेम तो प्राप्त हो रहा है लेकिन इन छेदों से वो लीक हो रहा है। इसलिए युगो युग तक, जैसे कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि युग युग बीत जाएंगे लेकिन हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इस आंदोलन में भी रहेंगे लेकिन प्रेम से वंचित रहेंगे। तो इन छेदों को रोकना है। तो ये छेद हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे हमें बचना है। तो जो हमारा पात्र है वो कैसे बना होना चाहिए? उसने बताया गया, जैसे कि अक्रूर प्रभु बता रहे थे कि इस पात्र में चार गुण होने चाहिए।
तृणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदे कीर्तनीय सदा हरि। जब तक ये चार गुण इस पात्र में नहीं होंगे हम इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी कर लें हम इस तृणादपि श्लोक को बाईपास नहीं कर सकते हैं। हार्ट की बाईपास सर्जरी हो जाएगी लेकिन इस श्लोक को हम बाईपास नहीं कर सकते। आप किसी भी शास्त्र का निचोड़ ढूंढ लीजिए, निचोड़ यही निकलता है। ये एक बॉटल नेक है लेकिन इससे निकलना पड़ेगा, इस छोटे द्वार से निकलना पड़ेगा तभी हम योग्यता पा पाएंगे। और जब तक इसके द्वारा हम नहीं निकलेंगे हम दूर ही रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। तो इसलिए अपने हृदय के जो छेद हैं इनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन चार योग्यताओं को अपने अंदर हम विकसित करें। जब इन चार योग्यताओं से अपना हृदय का पात्र बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। और जैसे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, प्रेम का अर्थ है आनंद, हम आनंद में रहेंगे। हम जीवों की सबसे बड़ी भूल क्या है, हम सोचते हैं कि हम अपने सुख के लिए प्रयास करके हम सुखी हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा हमारा भ्रम है। हमारा हर कार्य हमारे अपने सुख के लिए होता है लेकिन वही कार्य हमारे दुख का कारण बन जाता है। फिर भी हमें समझ नहीं आते, फिर हम दोबारा से प्रयास करते हैं कि फिर से हम अपने आप को सुखी बनाएंगे, अपने सुख के लिए कार्य करेंगे एक नए तरीके से, लेकिन परिणाम वही होता है। तरीके अलग अलग हो जाते हैं लेकिन परिणाम हमेशा एक ही होता है कि हमें सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो जब तक हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य तब हम करेंगे जब हमें मालूम चलेगा कि ये जो प्रेम है इसी से मैं संतुष्ट हो सकता हूं। और कृष्ण प्रेम बहुत आसानी से प्रदान कर रहे हैं। देखिए भगवान ने कहा कि जो मुझे तत्व से जानेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। फिर भगवान बोलते हैं भक्त्या माम भी जानाति यामनस चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति के माध्यम से ही आप मुझे तत्व से जान सकते हो। अब भक्ति कैसे करेंगे, गीता के 18 अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं भक्ति किसको प्राप्त होगी? भक्ति किसको प्राप्त होगी? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। तो भगवान को जानने के लिए, तत्व से जानने के लिए क्या करनी पड़ेगी? भक्ति। और भक्ति करने के लिए हमें किस अवस्था में आना पड़ेगा? ब्रह्मभूत अवस्था में। ब्रह्मभूत अवस्था के क्या लक्षण बताया गया है? न शोषति न कांक्षति, वो शोक नहीं करता, और समा सर्वेषु भूतेषु सब भक्तों के प्रति समान भाव रखता है, उसको भक्ति प्राप्त होगी। और ब्रह्मभूत अवस्था में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मभूत अवस्था में आने के लिए भगवान गीता के 18 अध्याय देते हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो, अपनी बुद्धि से अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, तपस्या ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और सत्यता बरतनी पड़ेगी, बहुत सी उन्होंने योग्यताएं बताई हैं, तब जाके हम ब्रह्मभूत अवस्था में आएंगे। तो बहुत कठिन है, पहले ब्रह्मभूत अवस्था में आओ, ब्रह्मभूत अवस्था के लिए सब तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, उस शास्त्रों का अध्ययन करो, उसके बाद फिर हम भक्ति के योग्य बनेंगे और फिर हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे, तब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होंगे। इतना बड़ा साइकिल, तो वहां भगवान तो गीता में बता के चले गए और किसी के बस की बात है नहीं। तो फिर यही भगवान करुणा अवतार लेके चैतन्य महाप्रभु आए, बहुत ही सरलता से किसी भी अवस्था में हम तमोगुण में क्यों नहीं पड़े तभी बड़ी आसानी से हम विशुद्ध सत्व में आ सकते हैं। क्या प्रोसेस दिया उन्होंने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो तुरंत हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। और कृष्ण को तत्व से जानने के लिए हमें त्रिगुणातीत होना ही पड़ेगा, हमें विशुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप और संकीर्तन के द्वारा हम आपको तीन गुणों से ऊपर उठा सकते हैं और कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं और फिर हम भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना सरल भगवान ने बना दिया, लेकिन कंडीशन क्या लगाई है कि इस जप को करने के लिए हमें अपराध रहित जप करना होगा और ये त्रिनादपि सुनिश्चित श्लोक को अपने जीवन में उतारते हुए जप करना पड़ेगा, तभी हम ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं। जब तक हम इस श्लोक अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे तो हम जप भी नहीं कर सकते। वो केवल अक्षर निकलेंगे मुख से, वो भगवान का नाम नहीं होगा। तो आज के दिन हम गौरांग महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ है, तो इस श्लोक के हम महत्व को समझने का प्रयास करें। और चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम दिया है केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, जो हरे कृष्ण महामंत्र का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसका शब्द रूप है। शब्द रूप में कितना सोचिए, जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो शब्द रूप में हमारे सामने आ गया। इसको हमने केवल ध्यान पूर्वक जप करना है, बस ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल है, ध्यान पूर्वक जप। जैसे जैसे हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, हम देखेंगे हमारे अंदर अपने आप भोगने की प्रवृत्तियां समाप्त होती जाएंगी और हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं दूसरों की सेवा करूं। जो हरे नाम हरे नाम एव केवलम के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हरे नाम का अर्थ है हरि का नाम और भक्तों की सेवा। और हरि का नाम और भक्तों की सेवा करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर और इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं भक्तों से मित्रता करूं, भक्तों की और सेवा करूं। फिर हम त्रिनाद विश्वेश्वर को बड़े आसानी से अपने जीवन में उतार पाएंगे। फिर हमारे अंदर भोगने की प्रवृत्तियां अपने आप समाप्त होती जाएंगी, कोई और तपस्या और कठिन कठोर तपस्या करने का आवश्यकता ही नहीं है। केवल ध्यान पूर्वक जब से अपने आप हमारे अंदर योग्यता आएगी कि हम इस कृष्ण प्रेम को स्वीकार कर सकें। तो कितना सरल, कितनी सरल विधि दी गई है, इससे सरल विधि और नहीं मिल सकती। इसलिए कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि जिसने इस मौके को खो दिया उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता, कहीं कहीं कल्पोत के बाद दोबारा कोई मौका मिलेगा। इतनी जैसे कहते हैं कृपा की परिकाष्ठा, इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हो रही है और उससे भी हम वंचित रह गए, फिर पता नहीं हमारा कब उद्धार होगा। कुछ भी नहीं करना, चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी अयोग्य क्यों ना हो, हम आज के दिन ये प्रयास करें, महाप्रभु से प्रार्थना करें कि हम बहुत ध्यानपूर्वक जप कर सकें। नरोत्तमदास ठाकुर बताते हैं कि मैं हर एक उस व्यक्ति का संग करना चाहता हूं जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है कि मैं प्रत्येक जीव को जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है उसको भगवत धाम ले जाऊंगा, अगर वो क्या ना करे, किसी की निंदा ना करे। कितना सरल है, नहीं हम लोगों के लिए यही करना मुश्किल हो रहा है। कारण हरे कृष्ण महामंत्र का जब ध्यान पूर्वक कर रहे हैं और किसी की निंदा नहीं कर रहे तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है, हम फिर फंस जाते हैं, इसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं। अगर महाप्रभु के भक्तों की हम थोड़ी सी भी सेवा कर दें तो महाप्रभु तुरंत अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर देंगे। महाप्रभु कृपा बांटने को तैयार हैं, कृपा की वर्षा हो रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने अहंकार का छाता अपने ऊपर रखा हुआ है। चारों तरफ बारिश हो रही है, हम सूखे के सूखे पड़े हुए हैं। शिवास आंगन में शिवास पंडित के मुसलमान दर्जी थे जो कि मांस भक्षण करते थे, उन्होंने संकीर्तन होते हुए देखा तो संकीर्तन की प्रशंसा कर दी, बस संकीर्तन केवल प्रशंसा मात्र की। तो महाप्रभु ने क्या कृपा की उनके ऊपर, चैतन्य महाप्रभु ने जिन्होंने अपने आप को छुपा के रखा हुआ था उस यावन के उस मुसलमान के आगे अपना त्रिभंग श्याम सुंदर रूप दिखा दिया, कल्पना से परे, बिल्कुल कल्पना से परे। ब्रह्मा जी शिव जी तपस्या करते रहते हैं उस त्रिभंग रूप को देखने के लिए, और उस मुसलमान ने दर्जी, उसने कोई तपस्या नहीं की, क्या किया, शिवा पढ़ने का दर्जी था और उसने प्रशंसा मात्र कर दी महाप्रभु के भक्तों की और उसको इतना अपना सुंदर श्याम सुंदर रूप दिखा दिया। उसकी क्या हालत हुई होगी उस दर्जी की, और उसने क्या बोला, जैसे देखा उसने क्या बोला था, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया कि आप कौन है। तो यह है महाप्रभु। दक्षिण भारत की यात्रा में निकले, क्या करते थे, देखने मात्र से ही कृष्ण प्रेम दे देते थे। किसी को आलिंगन किया उसको कृष्ण प्रेम दे दिया, जिसको आलिंगन किया वो नाचते नाचते अपने गांव में गया और जो उसका आलिंगन करता था उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। पूरे पूरे गांव ऐसे बदल दिए, सबको वैष्णव बना दिए। कोई कहेगा ये तो उस समय की बात है ना, 524 वर्ष पूर्व की बात है, अभी कहां होगा हमारे साथ, कौन हमारे तरफ देखेगा, कौन हमारा आलिंगन करेगा, हम तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, है ना, हम तो दुर्भाग्यशाली हैं। नहीं, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने विग्रह रूप में प्रकट हो रहे हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मुस्कुराते हुए मुखार बिंद को देखने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और केवल स्मरण करने मात्र से, जैसे आज हम नामामृत में पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने मात्र से ही हम इस बौद्ध जगत से छुटकारा मिल जाएगा। ये इतने कृपालु हैं भगवान, हमें इसका सही लाभ उठाना है बस। तो अगर हम इस आंदोलन को सही ढंग से समझें और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की खूब प्रशंसा करें, उनका गुणगान करें, तो महाप्रभु बहुत ही सरलता से अपने आप को हमारे सामने प्रकट करने को तैयार बैठे हैं। हमें अपनी जिद को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं चाहिए मुझे प्रेम, मैं यहीं पर ठीक हूं। किसी को ज्यादा बोला नहीं, डोंट प्रेस मी सो हार्ड, लेट मी लिव माई ओन लाइफ, मुझे अपना जीवन जीने दीजिए। लेकिन हम लोगों को समझना है हम क्या खो रहे हैं, और कितने हम लोग अगर इस कृपा से वंचित रहे फिर पता नहीं दोबारा कम नंबर आएगा। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया बोझिया विष खाएगा। तो इस मनुष्य जीवन में हमने कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, हमें ये जानना चाहिए इस संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकती, न धनम न जन्म, कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि, मुझे केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, न धन चाहिए, न जन चाहिए, न गुणगान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इन सब वस्तुओं के चक्कर में नहीं फंसना, इच्छा रखनी है अहेतु की भक्ति की। तो ये इच्छा हम व्यक्त कर सकते हैं ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। शिला प्रभा बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप का एक अर्थ ये है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि लेट मी लव यू, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। हम प्रेम की इच्छा रखें, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। तो इस प्रेम का हम इच्छा व्यक्त कर लें ध्यान पूर्वक जप करें, तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्रदाय ने चैतन्य महाप्रभु इसीलिए हैं, हम प्रेम की इच्छा करेंगे भगवान प्रेम प्रदान करने वाले हैं, कहीं समस्या क्या है, तुरंत हमें प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं, हम अपने प्रेम की इच्छा को व्यक्त नहीं करते हैं, इसलिए हम इस प्रेम से वंचित रह जाते हैं। और इस प्रेम से वंचित रहते हैं, एक प्रेम कौन सा है, महाभाव। जिस महाभाव के आस्वादन के लिए स्वयं कृष्ण आतुर रहते हैं, उस महाभाव का अंगीकार करके महाप्रभु हमें बांटने आए, इतनी उन्नत उज्ज्वल रस जो कि अभी तक किसी ने दी नहीं थी, किसी भी अवतार ने ऐसा नहीं दिया, स्वयं कृष्ण भी इसको नहीं दे पाए, वो उन्होंने दिया है। तो इस बात को हम समझें कि उन्नत उज्ज्वल रस है, वो हमें प्रदान करने आया चैतन्य महाप्रभु। और क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि केवल ध्यान पूर्वक जप करें, भक्तों का हम सेवा करें। महाप्रभु इतनी सेवा करते थे, बचपन में निमाई पंडित तो बहुत उद्दंड थे, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वो बहुत गंभीर हो गए थे। गंगा के तट पे जाते थे, ब्राह्मणों के वस्त्र धोते थे, वस्त्रों को सुखाते थे, तो सब लोग बोलते थे क्या कैसी सेवा कर रहे हो, तो निमाई पंडित क्या उत्तर देते थे कि नहीं, मैंने सुना है कृष्ण उनके ऊपर जरूर कृपा करते हैं जो कि पुण्य जीवात्माओं की सेवा करते हैं, तो मुझे आप सेवा करने दीजिए, मुझसे मौका मत छीनिए, मैं आप लोगों की सेवा करूंगा तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करूंगा, तो कृपया मुझे सेवा करने दें। तो निमाई पंडित मौके ढूंढते थे कैसे मैं सेवा करूं। जब वो श्राद्ध करने के लिए गया जा रहे थे तो रास्ते में बीमार पड़ गए, तो उन्होंने कोई औषधि नहीं मांगी, उन्होंने क्या मांगा, एक ब्राह्मणों का चनामृत मांगा, ब्राह्मण के चनामृत पीकर ही उन्होंने अपने आप को ठीक किया। तो इतने विनम्र सेवा करके उन्होंने दिखाया, श्री कृष्ण इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं कि दिखाया कैसे भक्ति करनी है। तो अगर हम उनके बताए हुए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और उनके आंदोलन में जुड़कर हम अपनी इच्छा से चलने का प्रयास करेंगे तो हम कैसे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी हर इच्छा है वो आध्यात्मिक जगत की इच्छा है कि हमेशा आनंद में रहूं, कोई दुख ना आए, हमेशा युवावस्था में रहूं, स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं। ये इच्छाएं यहां पूरी नहीं हो सकती, ये सारी इच्छाएं आध्यात्मिक जगत में ही पूरी होंगे, और आध्यात्मिक जगत में जाने का एक ही तरीका है कि महाप्रभु की आज्ञाओं का हम पालन करें। तो ये हमारा कर्तव्य है कि श्रीला प्रभुपाद जी कृपा से हमें ये दुर्लभ उपहार प्राप्त हो रहा है, आप हमें बड़े उत्साह से इसका सही ढंग से संभाल कर रखना है और इसका खूब वितरण करना है। आज पूरे विश्व भर में शिला प्रभुपाद जी कृपा से इस्कॉन के 500 से अधिक केंद्र हैं, तो पूरे विश्व भर में हमें इसका प्रचार करना है। लोग अज्ञानता में हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है कि आज चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, किसी को भी नहीं मालूम। तो जब तक हम महाप्रभु के का गुणगान विश्वभर में नहीं फैलाएंगे, जैसे कि महाप्रभु ने बताया, मेरे जाने के बाद मेरे नाम और मेरे धाम का खूब प्रचार होना चाहिए, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। वैसे तो उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा, नहीं बोला कि मेरे अप्रकट होने के बाद मेरे नाम का खूब प्रचार होना चाहिए। तो ये सारा जो कर्तव्य है गौरांग महाप्रभु की महिमा का प्रचार करने का, जो पूरा जिम्मेवारी है वो किसके ऊपर है, किसको करना है ये सब? हम सबको करना है। तो हम सबको खूब उत्साह के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। ये संकीर्तन आंदोलन है, जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे गौरांग महाप्रभु कृपा का, उतना ज्यादा हमें महाप्रभु कृपा प्राप्त होगी। तो पूरे उत्साह से हमें इसके प्रचार में जुड़ना चाहिए। लेकिन जो प्रचार करने का जो उत्साह प्राप्त होगा वो होगा शुद्धता से, प्योरिटी इज द फोर्स। और शुद्धता आएगी ध्यान पूर्वक जप करके, भक्ति के नियमों का पालन करके। और हम ध्यान रखें कि हम भक्तों को केवल गुणगान करें, ये संकीर्तन आंदोलन है। कलयुग केवल एक ही विधि है, संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब है गुणगान, हमेशा गुणगान करें। निंदा करने के बहुत से अवसर हमें प्राप्त होंगे, लेकिन हमेशा हम नेगेटिव टॉक से, निंदा से बचने का प्रयास करें और उसका हम गुणगान करने का प्रयास करें। जितना ज्यादा हम भगवान के भक्तों का और भगवान का गुणगान करेंगे, उतना ज्यादा हम आनंद में रहेंगे। और जितना ज्यादा हम इनसे दूर रहेंगे, इस संकीर्तन आंदोलन में रहते हुए भी हम आनंद से वंचित रहेंगे। आसपास वर्षा होती रहेगी लेकिन हम सुखी रह जाएंगे। तो आज हम गौरांग महाप्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके आने के उद्देश्य को समझें और उनके इस अवतरण का हम पूरा लाभ उठा सके। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है?
तो जी, जैसे या अज्ञानता होती है, तो कुछ ना कुछ रीजन रहता है कि क्रोध के वश में या कैसे कैसे भी कर देते हैं, तो फिर इसको कैसे अवॉइड करें?
अपनी हैबिट्स के कारण हम करते हैं, लेकिन प्रयास करते रहें। जितना हम ध्यान पूर्वक जब करेंगे, हमारी बुरी आदतें धीरे धीरे समाप्त होंगे। इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। तो हमें चारों के से ग्रेजुअल स्टेप में नहीं जाना कि पहले धर्म करेंगे, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, फिर प्रेम। इन चारों को हमने इग्नोर करना है, इन चारों के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा प्रेम तक जाना। तो हमारा जो जप है सीधा प्रेम पर केंद्रित होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है कि जो वो दर्जी था उसकी पहले से कोई योग्यता होगी तभी वो महाप्रभु के समय उसका जन्म हुआ, लीला में उसने भाग लिया। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो संकीर्तन आंदोलन है इस समय पर्सनली सुपरवाइज हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो अभी जो महाप्रभु की लीला समाप्त नहीं हुई है, हम सब महाप्रभु की लीला में ही भाग ले रहे हैं। जो संकीर्तन आंदोलन चल रहा है महाप्रभु की लीला ही चल रही है। तो हमारा यह सोचा कि हम कुछ अलग हैं, महाप्रभु की लीला में ही हम भाग रहे हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में जुड़े तो उनकी लीला में जो हम पात्र हैं, तो हमें भी निश्चित रूप से वैसी कृपा प्राप्त हो सकती है। ठीक है। गौरांग महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु प्राकट्य दिवस महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे।